आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास टेंथ के साइंस का फोर्थ चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझी थी कि हम लोगों को पता है कार्बन जो है इट इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड और ये कैटेनेशन करता है। ये दो खास बातें हैं कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। उनमें से भी कुछ अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो बॉन्ड करता है विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स बनाता है, ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन ने या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंपाउंड बनाया हो, इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में कार्बन जरूर है, तो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनमें कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी अटैच होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जरूर होता है। बहुत जमाने पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ही लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सालों बाद इन 1828 एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक वुलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन करके दिखाया यूजिंग अमोनियम साइनेट और ये इन्होंने बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज किए बना करके दिखाया। तो ये डिस्कार्ड हो गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही चाहिए। फ्रेडरिक वुलर के इस एक्सपेरिमेंट के पहले ये कहा जाता था कि एक वाइटल फोर्स होती है, एक खास तरीके की फोर्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिक्वायर्ड होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वाइटल फोर्स है इसकी रिक्वायरमेंट होती है टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वाइटल फोर्स का एक नाम दिया गया था जो कि उस वक्त साइंटिस्ट का मानना था कि केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही मिलता था, लेकिन बाद में फ्रेडरिक वुलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से इनके इस वाइटल फोर्स की थ्योरी को डिस्कार्ड करवा दिया था, गलत साबित करवा दिया था। कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते वो हैं कार्बन के कार्बाइड्स, मतलब कि दूसरे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एक अनायन की तरीके से काम करेगा तो उसे कार्बाइड कहा जाता है और इसमें जो कटायन होता है वो कोई मेटल हो सकता है। तो अलग अलग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एक अनायन का काम कर रहा है उन्हें कार्बाइड्स कहते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं कार्बाइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑल्सो डू नॉट कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो सॉल्ट्स होते हैं दे ऑल्सो डू नॉट कम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होते हैं। इतना समझ लेने के बाद में हमने आगे बात की थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की और उसमें से भी हमने यूज किया था एक एग्जाम्पल जो था इथेन का। इथेन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 और सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने इथेन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो सीखा था। तो अगर आप लोगों को कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, उसका नाम बताया हो केमिकल कंपाउंड का और आपको कहा जाए स्ट्रक्चर बना करके बताइए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसमें आपको चेक करना होता है कार्बन के कितने एटम्स यूज हुए हैं टू मेक दैट कंपाउंड। तो C2H6 में C2 है यानी कि दो कार्बन यूज हुए हैं, जितने भी कार्बन यूज हुए हैं उनका इस्तेमाल करके सबसे पहले आप एक चेन बनाएंगे, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आपको ये नॉलेज है, आपको ये पता है कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, कार्बन के चार बॉन्ड्स बनने ही चाहिए क्योंकि चार बॉन्ड्स, चार कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके ही कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी पूरी करता है, उसको ऑक्टेट पूरा करना है तो वो चार बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड्स भी जो भी दिए गए होंगे आपको उसमें आपको चेक करना है कि ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड्स कितने बन चुके हैं और चेक करो कि कितने रिक्वायर्ड हैं चार बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, जितने भी रिक्वायर्ड हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, अगर आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें आप उसकी पूर्ति करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन बॉन्ड से बना देंगे, बाकी की वैलेंसी जो है उसे पूरा करेंगे, सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और वैलेंसी को पूरा करेंगे। तो जब हम C2H6 का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड्स हैं, बाकी के तीन तीन वैलेंसी एक एक कार्बन के लिए बच जाती है, उसे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बना करके 3CH बॉन्ड्स बना करके सिंगल बॉन्ड्स एक एक कार्बन के लिए टोटल 6 हम लोग CH बॉन्ड्स बनाते हैं और हम C2H6 का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेप 2 में हमें यही करना होता है, हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है हाइड्रोजन्स का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके आप क्या कर सकते हैं, केवल आप सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंपाउंड्स ही वही होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनमें कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते। और जो हमारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें केवल सैचुरेटेड बॉन्ड्स बने हैं वो कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं एंड दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, आराम से स्टेबल बन के रहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाया है इसीलिए ये स्टेबल होते हैं। इथेन के बाद हमने नेक्स्ट प्रोपेन के बारे में पढ़ा था, मैंने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखाया था। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C3H8। जब भी कोई आप लोगों को ऐसे कंपाउंड दिया जाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताया जाएगा और तब कहा जाएगा कि स्ट्रक्चर बना करके आप दिखाइए। तो आप लोगों को प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया गया है C3H8। अगेन आप लोग इसमें देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 हैं, तो आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक चेन बनाएंगे जिसमें कार्बन 3 होंगे और तीनों सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच्ड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको चेक करनी है कि वैलेंसीज क्या सेटिस्फाई हो रही हैं, कितनी हो रही हैं और कितनी बाकी हैं चार वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो हमने बात की थी कि प्रोपेन के केस में जो तीन कार्बन्स हैं इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा अलग है एक दूसरे से, जैसे कि तीन कार्बन्स में से एक कार्बन ऐसा होगा जो सबसे लेफ्ट में होगा, एक कार्बन सेंट्रल कार्बन होगा और एक कार्बन सबसे राइट वाला कार्बन होगा। तो इसमें जो तीनों कार्बन हैं इनके स्वभाव थोड़े अलग हैं। जो सबसे लेफ्ट वाला कार्बन है उसका स्वभाव क्या है कि उसकी ऑलरेडी एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है बाय फॉर्मिंग अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बाकी के तीन वैलेंसी जो उसे पूरी करनी है वो आप कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स बना करके पूरा कर दीजिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई पूरी। अब जो सेंट्रल कार्बन है उसकी वैलेंसीज ऑलरेडी 2 पूरी हो चुकी हैं क्योंकि उसने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स दो कार्बन के साथ बनाए हैं, तो आप इसके साथ जब इसकी वैलेंसी बाकी की पूरी कर रहे होंगे तो केवल दो ही हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स आप बनाएंगे। उसके बाद जो सबसे राइट वाला कार्बन होगा उसमें आप देखेंगे कि उसने ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, तो उसकी बाकी की वैलेंसीज जो कि 3 है उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें CH बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स 3 मोर बनाने पड़ेंगे, तो उससे इसकी टेट्रावैलेंसी जो है कार्बन की वो पूरी हो जाएगी। तो प्रोपेन में आपने एक बात सीखी वो ये थी कि हमेशा आपको कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यूज नहीं करने होते हैं, आपको ये देखना होता है कि उसकी वैलेंसी ऑलरेडी कितनी पूरी हो चुकी है और कितनी और बची है टू मेक इट टेट्रावैलेंट। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है नो मैटर व्हाट, मतलब कि हर एक परिस्थिति में कार्बन की टेट्रावेलेंट जो नेचर होती है उसे आपको ध्यान में रखना होता है। अगर कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर चुका है तो 2 और रिक्वायर्ड हैं टू मेक इट टेट्रावेलेंट। तो 4 बॉन्ड्स आपने हमेशा कार्बन के बनाने होते हैं, 2 ऑलरेडी सेंट्रल कार्बन बना चुका था इसलिए उसने सिर्फ 2 हाइड्रोजन यूज किए टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंट नेचर। तो ये तो हमने प्रोपेन के बारे में बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इथीन के बारे में बात की थी। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कार्बन के कितने एटम्स यूज हुए हैं, वो पता चल जाए तो आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बनाना शुरू कीजिए और एक चेन बनाइए यूजिंग दोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिए हैं। C2H4 में 2 कार्बन एटम्स का बताया गया है कि 2 कार्बन एटम यूज करने हैं, तो आप सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके कार्बन कार्बन को अटैच करके एक चेन बना दीजिए छोटी सी जिसमें 2 कार्बन यूज हुए हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी जो है वो कितनी पूरी हो चुकी है, तो कार्बन की C2H4 में एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है फिर से। उसमें दिखाया गया है कि 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के लिए, 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के लिए ये यूज करने हैं। और हमेशा जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं आप, बाकी के 2-2 हाइड्रोजन एक एक कार्बन से आप अटैच कर देंगे सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे कि कार्बन की अब कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, अभी भी एक वैलेंसी बची है क्योंकि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो हमें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो हम 3 ऑलरेडी बना चुके हैं, चौथा बॉन्ड जो है वो एक और हाइड्रोजन यूज करके हम नहीं बना सकते क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करने हैं। तो एक ही ऑप्शन हम लोगों के पास बच जाता है कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने का, वो ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे तो आप देखेंगे कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिए हैं डबल बॉन्ड, और बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड उसने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनाए हैं। तो टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए, कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, उसका टेट्रावेलेंट नेचर पूरा हो चुका है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मोर देन 1 बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उसे हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इथाइन के बारे में भी समझा था। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2, और इसको बनाने का तरीका भी समझा था। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल गया C2H2। आपने इसमें देखा कि C2 लिखा है, यानी कि 2 कार्बन यूज करने हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना करके चेन का फॉर्मेशन कीजिए। उसके बाद कितने हाइड्रोजन दिए हैं वो चेक कीजिए, टोटल H2 लिखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आपने यूज करने हैं इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा वाला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना करके अटैच कर दीजिए। अब चेक करिए कि कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, 4 बनाने के लिए बॉन्ड्स कितनी और रहती है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड हो गया, दूसरा आपने CH बॉन्ड बनाया है, CH सिंगल बॉन्ड बनाया है तो दूसरा हो गया, 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 2 और चाहिए, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 2 बॉन्ड हमें और बनाने हैं, हम और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यूज नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है और वो ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो जो 2 बॉन्ड्स रह गए हैं कार्बन के, वो कहाँ बनेंगे, वो कार्बन और कार्बन के बीच में बनेंगे, यानी कि टोटल इथाइन के अंदर CC बॉन्ड्स होंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस केस में ही हम कार्बन की टेट्रावेलेंट नेचर को सेटिस्फाई कर पाएंगे क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, टोटल बॉन्ड्स हो जाएंगे 4, कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो जाएगी। और इसी तरीके से इथाइन का फॉर्मूला जो होता है उससे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स है तो इथाइन भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे, और आज का टॉपिक है चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स। पेज नंबर 64 पर ये टॉपिक जो है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। चेन्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया मिल गया है, आप लोगों ने मीथेन का फॉर्मूला देखा, आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा, आप लोगों ने ईथेन का फॉर्मूला देखा उसका स्ट्रक्चर देखा, प्रोपेन का फॉर्मूला देखा और उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा। तो यहाँ पर आपको चेन बनाने की बात हमने बोली थी, कार्बन कार्बन जब अटैच होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस वक्त उसे चेन कहा जाता है। तो ऐसे जो चेन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसमें क्या होता है, मोर देन कार्बन एटम्स जब अटैच होते हैं एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके, तो उन्हें हम चेन्स का नाम देते हैं। आप लोगों को कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड्स की चेन्स दी गई हैं पेज नंबर 64 पर, टेबल 4.2। मैंने आप लोगों को कहा था इसका आपने यूज करना है टू मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आप लोगों को दिए गए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है आपको, गिवन है, आपको इनका स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी थी। ये आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। टेबल 4.2 में आप देख पा रहे होंगे ऑन पेज नंबर 64, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसमें उसकी चेन की लेंथ बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जब इथेन का फॉर्मूला आपने यूज करके कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें दो कार्बन की चेन बनी। प्रोपेन के केस में C3 था इसलिए 3 कार्बन एटम्स की चेन बनी। ब्यूटेन में चेन और बड़ी हो गई, उसमें 4 कार्बन एटम्स की चेन बनी। पेंटेन में और बड़ी हो गई, इसमें 5 कार्बन एटम्स की चेन बनी। और हेक्सेन में और भी बड़ी हो गई हमारी चेन जो है, उसमें 6 कार्बन एटम्स की चेन बनी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे चेन की लेंथ भी बढ़ती जाती है। अब आप लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसमें आप लोगों ने स्ट्रेट चेन बनाई है, सीधी चेन बनाई है। अब आप लोग यहाँ पर आज की क्लास में सीखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सीधी चेन नहीं, हम अलग तरीके से भी चेन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग आ जाओ पेज नंबर 64 पर, इसमें देखो फिगर 4.8, इसमें आप लोगों को दिखाया गया है 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स। सबसे पहले कार्बन स्केलेटन का क्या मतलब है? कार्बन स्केलेटन का मतलब है कि जब आप लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं कोई भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यूज करके, जब आप लोग स्टेप यूज करके सबसे पहला स्टेप जो होता है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए, उसमें आप CC सिंगल बॉन्ड बना करके चेन बना रहे होते हैं, उसको स्केलेटन कहते हैं क्योंकि उससे शुरुआत की गई है, उससे शुरुआत करके बाद में हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो CC सिंगल बॉन्ड करके सिर्फ जब हमने एक चेन बनाई है उसको स्केलेटन कहते हैं, उसको स्केलेटन कहते हैं। और यहाँ पर 4.8 में आप देख सकते हो फिगर 4.8 पेज नंबर 65 कि जब ब्यूटेन का फॉर्मूला हम यूज करके और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो एक तरीका तो होता है स्केलेटन बनाने का कि आप स्ट्रेट चेन बना दें, दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक ब्रांच बना दें। उसमें आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना करके 3 कार्बन को अटैच करेंगे और उसमें से जो सेंट्रल कार्बन होगा उसके साथ एक और कार्बन अटैच कर देंगे। तो इसमें भी ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कार्बन के नंबर तो 4 ही हैं, जैसा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा था कि 4 कार्बन एटम इस्तेमाल करके आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस स्ट्रक्चर में आपने क्या किया है, आपने 3 कार्बन पहले बनाए हैं, उनकी चेन बनाई है और जो सेंट्रल कार्बन है CCC करके आपने 3 कार्बन यूज करके एक चेन बनाई है, उसका जो सेंट्रल कार्बन है बीच वाला कार्बन है उससे आपने एक और कार्बन अटैच कर दिया है, इसको कहते हैं ब्रांचिंग। आपने कार्बन कार्बन की सिंगल जो बनाई स्ट्रेट चेन उसके साथ आपने एक ब्रांच बना दिया जो कि एक कार्बन का इस्तेमाल करके आपने बनाया। तो जब ब्यूटेन आप लोग बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर तो आप एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना सकते हैं जिसमें कार्बन 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 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होंगे। दूसरा तरीका ये है कि कार्बन 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 आप 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में डालेंगे और चौथे कार्बन की ब्रांच बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी वैलेंसी पूरी करना, वैलेंसीज जो होती हैं उसे सेटिस्फाई करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ब्यूटेन की जब स्ट्रेट चेन बनती है उसमें हम उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली अटैच करते हैं, ये देख करके कि कितनी उसकी बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुकी हैं और कितनी रिक्वायर्ड है टू मेक 4 बॉन्ड्स, हम उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करते हैं और CH सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप फिगर 4.8B देखो पेज नंबर 65 पर, जो पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कार्बन कार्बन के स्ट्रेट चेन बनाई गई है, सीधी चेन बनाई गई है और चेन बना देने के बाद में लास्ट में वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से अटैच किया गया है। दूसरी वाली स्ट्रक्चर देखो, उसके राइट में जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो, उसमें क्या किया गया है कि उसमें CCC स्ट्रेट चेन जो बनाई है वो 3 कार्बन की बनाई है, चौथी कार्बन जो है वो ब्रांच के रूप में इस्तेमाल की गई है और उसी हिसाब से आपको देखना है कि कितने बॉन्ड्स हर एक कार्बन के ऑलरेडी बन चुके हैं और ये ध्यान में रखना है कि 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं ये देख करके, कितने बच रहे हैं वो देख करके हाइड्रोजन जो है अकॉर्डिंगली आप लोगों को लगा देने हैं, जितने रिक्वायर्ड हाइड्रोजन है उतने आप लोगों को लगा देने हैं हर एक कार्बन का जो परिस्थिति है जो पोजीशन है वो देख करके। आपको मैंने सिखाया हुआ है कैसे चेक करते हैं, आपको ये चेक करना होता है हर एक कार्बन के केस में, आपको देखना होता है कि वो ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बना चुका है, उसके बाद आपको देखना होता है कि आपको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ऑलरेडी अगर कोई कार्बन 3 बॉन्ड्स बना चुका है तो उसको अपनी 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए केवल एक ही एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ अटैच होना पड़ेगा, तो वहां पर आप उसे केवल एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच करा देंगे। इसी तरीके से अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना दिए हैं तो उसके 2 ही बॉन्ड्स अब रिक्वायर्ड है, तो वो CHCH 2 बॉन्ड्स बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बनाएगा। और अगर ऐसा कोई कार्बन है जिसने ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बनाया है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो बाकी के बॉन्ड्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड्स। तो इसी तरीके से आप लोगों को अकॉर्डिंगली का मतलब है कि आप परिस्थिति के हिसाब से कि कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं चेन के अंदर, ये देख करके बाकी के बॉन्ड्स आपको बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बनाने होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड्स। बेसिकली आपको सीखना यहाँ पर ये था कि ब्यूटेन जो है उसको बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसका स्ट्रेट चेन बनाएं और स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बनाएं, लेकिन दूसरा भी तरीका है हमारे पास, उसमें हमने कार्बन जो है वो यूज किए, 3 कार्बन यूज किए टू मेक अ स्ट्रेट चेन, और 4th कार्बन इस्तेमाल करके हमने एक ब्रांच बना दिया है, और ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही इस्तेमाल कर रहा है विच इज C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। यहाँ पर जो हमने ब्रांच वाला बनाया, जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच वाला बनाया, वो अलग है स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर से। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। इस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसो यानी सेम, मर मतलब यूनिट, यूनिट जो है वो सेम है विच इज C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। एक में स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हुआ है, दूसरे में एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ कार्बन नॉट ओनली फॉर्म्स स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन्स, इट कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग्स। जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन्स बना सकता है, साथ में वो रिंग्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। और यहाँ पर हमें सीखना है अबाउट साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक कंपाउंड का नाम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12। कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब कि एक साइकिल बन रही है, एक रिंग बन रही है, और हेक्सेन है यानी कि C6 होगा यहाँ पर। हेक्स मतलब कि हेक्सा मतलब कि 6। सो साइक्लोहेक्सेन से आप ये समझ सकते हैं कि साइक्लो मतलब होता है एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यूजिंग 6 कार्बन एटम्स। तो आप पहले क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप स्केलेटन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ही आप एक रिंग बना देंगे कार्बन की, 6 कार्बन की एक रिंग आपको बनानी है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 65 पर फिगर 4.9A, जो कार्बन कार्बन स्केलेटन बनाया गया है वो एक रिंग बनाया गया है, एक साइकिल यानी कि एक रिंग तरीके से बनाया गया है। कार्बन के 6 एटम्स को रिंग के फॉर्म में अटैच किया गया है। नेक्स्ट हमारा वही स्टेप है, हमें वैलेंसी पूरी करनी होती है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स बना करके एक साइकिल का फॉर्मेशन हो गया है, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन के 6 बॉन्ड्स बना करके बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हम एक एक कार्बन को चेक करेंगे कि उसने ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स बना दिए हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर साइक्लिक फॉर्मेशन में जो स्केलेटन बनाया है उसमें आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि हर एक कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना दिए हैं, तो उसके 2 मोर बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 4 बॉन्ड्स। टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन के 2 बॉन्ड्स और बनाने रहते हैं, क्योंकि 2 उसने ऑलरेडी कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करके बना दिए हैं। तो आप इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिमेनिंग जो बॉन्ड्स है वो बनाएंगे बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन एटम 2 और बॉन्ड्स बनाएगा CH सिंगल बॉन्ड्स, और इसी तरीके से आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे टोटल। एक तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हो जाएंगे 2, और 2 हो जाएंगे CH बॉन्ड्स। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलेगा वो होगा फिगर 4.9B में। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो स्ट्रक्चर लास्ट में बन करके आपको तैयार होगा, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग देखिएगा स्ट्रक्चर मैच कराने के लिए सिर्फ कि सही बना है या गलत बना है। अभी तक आप लोगों ने कार्बन के स्ट्रेट चेन्स बनाए, ब्रांच चेन्स बनाए, साइक्लिक कार्बन के कंपाउंड्स भी बनाए, लेकिन सभी के सभी सैचुरेटेड थे। ये सभी के सभी जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स जो आपने अभी तक देखे, वो सभी के सभी ऐसे थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड्स है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड्स होते ही हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी कंपाउंड्स क्या हैं, ये सैचुरेटेड हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कार्बन केवल स्ट्रेट चेन जब बनाएगा तो वो सैचुरेटेड होने चाहिए, या ब्रांच चेन जब बनाएगा तो वो सैचुरेटेड होने चाहिए, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स उसके सैचुरेटेड होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड भी बना सकता है, और इसका एग्जांपल है साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का C6H6 बेंजीन। बेंजीन में आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 65 पर आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया गया है फिगर 4.10 में। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, साथ में दूसरे कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 3 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो भी 3 है, और ऐसा कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना दिए हैं, तो लास्ट में उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए वो केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि हर एक कार्बन जो है वो किसी न किसी तरीके से एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हर एक कार्बन बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास बेंजीन के अंदर कार्बन जो है वो 6 है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो भी 6 ही है। बेंजीन की एक खास बात है कि बेंजीन में जो आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये इसी तरीके से नहीं होता जैसा आप लोगों को स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है पेज नंबर 65 पर। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, तो आप सीखेंगे बेंजीन ऐसा एक कंपाउंड है जो बहुत ही स्टेबल होता है, और इसमें एक खास बात यह होती है कि इसकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में ये जो होती है ये घूमती रहती है, और इसीलिए इसी के वजह से इसको एक नाम दिया गया है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ऐसी घूमती हुई बॉन्ड्स जब होती हैं किसी कंपाउंड में तो हम उस कंपाउंड को रेजोनेंस कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनमें रेजोनेंस होता है, यानी कि इनके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये एक जगह पर फिक्स होकर नहीं रहते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं, हर एक कार्बन के पास बारी बारी से पहुंचते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं जिनमें रेजोनेंस होती है, यानी कि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो घूमते फिरते रहते हैं और रेजोनेंस होती है, घूमते फिरते रहने को ही रेजोनेंस कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं। रेजोनेंस के बारे में और डिटेल में आप लोग 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि कार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों तरीके के कंपाउंड्स बना सकता है, चेन बना सकता है स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड बना सकता है चेन्स, या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकता है। अभी तक आपने जो कंपाउंड्स देखे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही केवल बॉन्ड्स बने थे, तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज होके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ हो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन को इस्तेमाल करके कंपाउंड बने हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में से भी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड्स हों उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या फिर इनका एक और नाम है अल्केन्स, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, तो इन्हें अल्केन कहते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मोनो माने सिंगल, वन, मोनो मतलब वन, और इसी तरीके से जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें जब कंपाउंड का नाम रख रहे होते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। जैसे जो सबसे पहला वाला कंपाउंड होगा किसी सीरीज में, जैसे एल्केन्स की सीरीज की बात करें तो उसमें क्या होगा, मीथेन सबसे पहला वाला कंपाउंड है, उसके बाद नेक्स्ट जो है इथेन, इथ का मतलब भी 2 होता है, बाई का मतलब भी 2 होता है, लेकिन यहाँ पर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग यूज करते हैं तो अल्केन्स के अंदर किस तरीके से नेमिंग होती है, इसमें क्या होता है इथेन में इथ का मीनिंग 2, यानी कि जब इथेन का फॉर्मूला बना है तो उसमें 2 कार्बन्स यूज हुए हैं। प्रॉप का मतलब होता है 3, तो इसीलिए यहाँ पर जो 3 कार्बन्स है उनका यूज हुआ है। ब्यूट का मीनिंग होता है 4, तो इसीलिए 4 कार्बन यूज हुए हैं ब्यूटेन में। प्रॉप तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है पेंट, पेंटेन में पेंट जो वर्ड है वो 5 के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेक्सेन, तो हेक्सेन का जो होता है हेक्स वर्ड वो 6 के लिए यूज होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके ही अल्केन का नाम बनता है। अगर कहीं पर थ्री कार्बन्स हैं तो प्रॉप यूज होगा क्योंकि थ्री कार्बन है, उसके बाद लास्ट में एन लगा दिया जाएगा तो प्रॉप एन बन जाएगा, इसीलिए एल्केन लिखा गया है। कि एल्क की जगह तो आप लिख देंगे वो नंबर जो यूज हुआ है कार्बन एटम बनाने के लिए, कार्बन चेन बनाने के लिए, कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, लास्ट में आपको सिर्फ एन लगा देना है तो ये बताएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, अगर डबल बॉन्ड है तो उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, अगर डबल से ज्यादा बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उनको हम अल्काइन्स कहते हैं। ये नाम है, नाम रखने के तरीके हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो और वो हाइड्रोकार्बन हो तो उसे हम अल्कीन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम अल्काइन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की, और आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो अभी भी तो आप अपने टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।